जय गोपी जाना वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जाना वल्लभा गिरिवर धारी जशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन जशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नीताय नीताय गौर हरिबोल 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 नीताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल जयं विष्णुपाद विश्व परिवार आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सिंह गुरु विदग्ध पंडित भक्ति सिद्धांत श्वश्र गोस्वामी प्रभुपाद की वैष्णव पराकाष्ठा मूर्ति गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की सच्चन शील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम सिद्ध शील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की स्वरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़गोस्वामी बिंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की अंतकटी वैष्णव भक्त बिंद की बिंदा देवी तुलसी महारानी की इताई गौस्तनात्मनंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके मूकं करति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द चैतन्य महाप्रभु की आज हम लोग पाठ का श्रवण करेंगे आदि लीला अध्याय दो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोक संख्या 31 से 36 नंबर श्लोक आज 31 से 35 तो कोई तात्पर्य नहीं है 36 नंबर श्लोक पहले हम लोग आवृत्ति कर लेते हैं इसके बाद में 31 से शुरू करेंगे प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप माताए प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमि मूल स्वरूप श्रील प्रभुपाद की तो श्लोके शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद की प्राकृत भौतिक अप्राकृत आध्यात्मिक सृष्टि सृष्टियों में जत जितने भी हो जीव रूप जीव ताहार उनके जे जो आत्मा परमात्मा तुमि आप मूल स्वरूप मूल स्रोत अनुवाद भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि आप उन सब के परमात्मा है कृपया आप लोग दोहराइए भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि आप उन सबों के परमात्मा है। तात्पर्य यह वैश्विक प्राकट्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होते, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं से परिपूर्ण होते हैं। उन आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी है जो नित्य मुक्त जीव है, और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के तीनों तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। ये नाना जोनियों में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की दिव्य प्रेम भक्ति से सदैव विमुख है। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार है। उनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है, यद्यपि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है। जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है, धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। धुआं बाधक है जबकि अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ पांच प्रकार के संबंध से प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति सांसारिक सुख तथा दुख का आत्मकेंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने आपको सर्वेसर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में है, इसलिए ये नारायण कहलाते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। हम लोग पहले 31 नंबर श्लोक थोड़ा सुन लेते हैं। 31 नंबर श्लोक में ये जे अब जब स्थिति चल रहे है, जे इसका पहले क्लास में जे 30 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी ने जे स्तुति किए थे श्री कृष्ण के लिए, जे नारायणस्तम नहि सर्वदेहिनाम आध्या आत्मा सधीसाखिल लोक साक्षी नारायणं नरभुजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव मायया। ये जो श्लोक है जे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण कहते हैं जे अधीश माने ईश्वर के ईश्वर, हे ईश्वर के ईश्वर, आप समस्त जीवों के आत्मा प्राण स्वरूप या परमात्मा है एवं समस्त जगत के साक्षी माने सर्वद्रष्टा है, तब आप क्या नारायण नहीं है? नारायण मतलब बता रहे जे नरभु जलायनात्, जे नर जल जिसका घर है और वो जल जिससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको नारायण नाम से प्रसिद्ध है। और ये नारायण आपका ही अंश विशेष है, और कोई नहीं, आपका ही अंश विशेष है। कृष्ण को बता रहे ब्रह्म, आपका ही अंश विशेष है। और सत्यम तो माया, और ये आपके माया द्वारा सृजित नहीं है। अथवा ये जे नारायण जे द्वितीय कालाध्यक्ष विष्णु गर्भाध्यक्ष विष्णु ये जे जल में लेटे हुए है, ये सांसारिक जीवों का तरह सीमाबद्ध नहीं है, यही आपकी माया का खेल है। ऐसे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण स्तुति किया है। वही श्लोक को पुष्टि करने के लिए कृष्णनाथ गोस्वामी बंगाली पोयार में इसको समझा रहे। कृष्णनाथ गोस्वामी पहले ही बता दिए है जे मेरा श्लोक ग्रंथ में बहुत संस्कृत श्लोक है, इसका जो संस्कृत श्लोक जानते हैं या नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते, क्योंकि मैं जितना संस्कृत श्लोक कोट किया हूँ वो सारी श्लोक को मैं बंगाली पोयार में समझा दिया हूँ, इसलिए सबके लिए आसान है इसको समझने के लिए। ब्रह्मा जी ने एक किसी को बता दे श्लोक में শিশুবৎস হরিবম্ভা করি অপরাধ, অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ। বাতাতে যে শিশুবৎস হরি, মানে শিশু মানে কৃষ্ণ কা সাথ জিতনা গোয়াল ওয়াল সখা মিত্র আয়ে থে, শিশু মধুমঙ্গল সুরাম শ্রীরাম সব শিশু, এবং বৎস মানে বাছরা, যে কৃষ্ণ নে জিতনা বাছরাকে লেকে আয়ে থে, এবং কৃষ্ণ নে সখ কৃষ্ণকে সখাও নে জিতনা বাছরাকে লেকে আয়ে থে, সবকো ব্রহ্মা নে শিশু এবং বৎস মানে গো বালক এবং গো বৎস কো হরণ করকে ব্রহ্মা যে অপরাধ কিয়ে হে, এই অপরাধ কে কারণ যাব ব্রহ্মা নে সমঝ গিয়া যে মে অপরাধ কর চুকা হুঁ, তব ইসকো অপরাধ খণ্ডন কে লিয়ে কৃষ্ণ কুমার রাকে ক্ষমাচন্দ্র ক্ষমা, এই অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ, অপরাধ ক্ষমা করনে কে লিয়ে কৃষ্ণ কা পাস ভিক্ষা ভিক্ষা ইয়া কৃপা যাচনা করতে হে, যে আপ কৃপা করকে মেরে কো ক্ষমা কর দিজিয়ে। ইয়া পে অজরজ কি বাদ হে যে ব্রহ্মা যে এই জগৎ মে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব হে, এ কেসে গলতি কর সকতে হে, কিন্তু ইনকা তো সম্ভব নাই হে, কিন্তু ব্রহ্মা সমস্ত ভগবান কা অবতার কা লগভগ জানকারী হতা হে, কিন্তু ব্রহ্মা কা জান মাধ্যম মানে জানকারী কা মাধ্যম সেই সমস্ত ভগবান অবতে লেতা হে, যব এই জগৎ যব কংস কা অত্যাচার মে পুরা ত্রস্ত বিতস্ত হয়ে গিয়ে থে, শুধু জগৎ কা বাসে নেই এমনকি দেবতা ভি, তব দেবতা নে সব লোক মিলকে ব্রহ্মা কা পাশ গিয়ে যে আপ কুছ উপায় কিজিয়ে, হাম লোক কা বস কা নেই হে, কংস কা হাম লোক কুছ নেই কর সকতে, ও ইতনা শক্তিশালী হে। তব ব্রহ্মা নে সমস্ত দেবতা কে লেকে ক্ষীর সমুদ্র তট পর যাতে হে, যাকে ভগবান কা স্তুতি করতে হে, তব ভগবান ব্রহ্মা কো আদেশ দেতা হে যে মে শীঘ্রই এ ধরতি মে অবতার লুঙ্গা, আপ মেরে আদেশ এ সব দেবতা কে বাতা দিজিয়ে, ও দেবতা লোক মেরে কো সহায়তা করনে কে লিয়ে মেরা পরিবার মে ইয়া ব্রজ মে আলাগ আলাগ জায়গা মে গোপ সখা গোপ মে বিভিন্ন মে জন্ম জন্ম লে আপনি এক অংশ রূপ মে, তাহলে বলতে থাকতে দেবতার লোক কেউ নেই শুন পায়া, লেকিন ব্রহ্মা ভগবান কা মানি সবকা শুনে কা বসকা নাই, ভগবান জিসকো যোগ্যতা প্রদান করেগা উসকেই শুন সে, জিস প্রকার আবি রথ যাত্রা চল রে, আপ লোক মালুম হে জগন্নাথ পুরী মে যে জগন্নাথ কে সেবা পূজা চলতে হে, উসকা এক বিশেষ যে নিয়ম হতা হে, উসকা যে গ্রন্থ নাম কিয়া হে মাতলা পঞ্জিকা, এ পঞ্জিকা মে সমস্ত জগন্নাথ কা যে কেউ বলতে যে সেবা পূজা লিখা রাতে কেসে হোগা কে হোগা, লেকিন এ গ্রন্থ সব লোক পড়ে নেই সকতে বা সবক পড়নে কা যোগ্যতা নাই হে, ও উড়িয়া ভাষা মে হে, লেকিন কোই পড়না চাহেগা ফির ভি সমঝ নেই সকতে, ও এসেই মানে ভাষা মে লিখা হে আর সবক যোগ্যতা ভি নাই হে, কোই এক তো ব্যক্তি কে মানে উসকা অধিকার হে, ও পড় কে জো বাতায়েগা সমস্ত পাণ্ডা কো ওই স্বীকার করনা পড়েগা, ও জো বলেগা যে আরতি আজ 8 বাজে হোগা আজ 6 বাজে হোগা আজ নাই হোগা কুছ ভি বলে, ও জো বলে ও সব মাননা পড়েগা, উসি প্রকার ভগবান কা কে আদেশ আদেশ হে, ব্রহ্মা নে জো বলেগা সমস্ত জগৎবাসী কো ওই স্বীকার করনা পড়েগা, কিন্তু ব্রহ্মা নে অধিকার হে ভগবান কা বাণী কো সমঝনা কা এবং শুননে কা, উসি প্রকার ব্রহ্মা নে সমস্ত দেবতা কো আদেশ দিয়া হে যে ভগবান নে হাম লোক কা প্রার্থনা শুন লিয়ে হে প্রসন্ন হুয়া হে, শীঘ্রই এই ধরতি মে অবতরে লেঙ্গে, এবং আম লোক আপ লোক কা পর আদেশ হে সব লোক এক এক আপকা অংশ রূপ মে এই কৃষ্ণ কা পরিবার মে ব্রজ মে আপ লোক জন্ম লে লিজে, লেকিন ব্রহ্মা নে স্বয়ং এ সেবা কার্য অংশগ্রহণ কিয়া নেই, ভগবান ব্রহ্মা কো আদেশ দিয়া তো সকে বলি ইসকা মতলব নাই যে ব্রহ্মা কো আদেশ নাই দিয়া, ব্রহ্মা কো ভি তো লেনা চাই থা না ভগবান কা ডাইরেক্ট সেবা মে, লেকিন ও লিয়া নেই, ইসি কারণ সে ব্রহ্মা কা এ দিমাগ চকরা গিয়া, যে যে সময় যশোদা কা দেবকী কা গর্ভ মে কৃষ্ণ আয়ে থে উসি সময় সমস্ত দেবতা ব্রহ্মা সব আগে গর্ভস্থিতি কিয়ে থে, তাহলে ব্রহ্মা কা তো কই মানে ইসকা গলতি না কই মতলবই নাই হে, কিন্তু মালুম হে কৃষ্ণ আয়ে কিন্তু দেবী কা গর্ভ সে আয়ে হে, লেকিন উসকা যেহেতু ভগবান কা আদেশ সে ও ডাইরেক্ট সেবা মে অংশগ্রহণ নাই কিয়া হে, ইসলিয়ে উসকা দিমাগ ঘুম গে, ইসলিয়ে অপরাধ কর বেঠে, এই কারণে আচার্য লোক ইসকো ইসকো ব্যাখ্যা করতে হে, ইসলিয়ে হাম লোক নির্দেশ দেয়াতে হে যো জিস কিসি কা জব কোই সেবা কা ভার দিয়া যাতে হে, ইসসে মানে ইসকা সিদ্ধান্ত নিকালতে হে সেবা কা ভার দিয়া যাতে হে, উনকো ভি ও সেবা মে থোড়া থোড়া ভাগ লেনা চাইয়ে, এসে নাই যে ও সবকো বাঁট দেগা খুদ সেবা মে ভাগ নেই লেগা, জেসে হাম মে জব পেহলে ইসকন মে আয়া থে আয়া থা তো মে সমতে ইনচার্জ মতলব কিয়া যে কুছ নেই করনা হে, লেকিন মেরে কো এক সিনিয়র পুলিশ সামঝায়া থা ইনচার্জ মতলব আপকা সেবা কা পুরা দায়িত্ব দিয়া গে হে, মতলব আপ সারি সেবা কর সকতে হো, জব আপ ইনচার্জ নেই হোগে आप सब सेवा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको देखा इतना ही कीजिए, आप एक ग्लास सेवा जल पानी भरना है, आपको किताब नहीं लाना है, किताब और कोई लाएगा, आप किताब ला नहीं सकते क्योंकि आपको अधिकार नहीं दिया गया है। जो इंचार्ज है वो सब सेवा कर सकते हैं, वो चाहेगा तो पानी भी ला सकते हैं, किताब भी ला सकते हैं, झाड़ू भी मार सकते हैं। इंचार्ज मतलब क्या, उनको भगवान का सारी अधिकार दिया गया है, उनको चाहिए क्या सब सेवा में अंशग्रहण करना, क्योंकि वो ताले भगवान का विशेष कृपा लाभ लाभ कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा ये बात को नहीं समझने के कारण वो भगवान का डायरेक्ट सेवा में अंशग्रहण नहीं किया, ब्रज में खुद जो जन्मग्रहण नहीं किया, इसलिए उनका माने यही गलती करने का ही कारण है। जब जो हो जब ब्रह्मा जो समझ गया जी मैं तो गलती कर दिया हूँ, क्या किया जाए, गलती कर जो भगवान का पर माफी मांग के क्षमा जितना करना पड़ेगा, करने से भगवान भगवान तो परम करुणामय मेरे को क्षमा कर देंगे। तले इसलिए जब किसी के पास जब कोई अपराध का क्षमा माने मांगने जाते हैं तुरंत बोल नहीं सकते वो मेरे को क्षमा कर दीजिए, पहले उसको स्तुति करना होता है, गुणगान करना, तो संतुष्ट करना, इसका बाद उसका जे आपका जे मूल उद्देश्य क्या बोलना होता है, तब कार्य सफल होता है। इसलिए ब्रह्मा भी इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप भगवान को संतुष्ट करेंगे, इसके बाद क्षमा मांगना करेंगे। 32वें श्लोक में बताते हैं, तुम्हारो नाभि पद्म हुईते आमार जन्मोदय, तुमी पिता माता यामी तुम्हारो तनय। ब्रह्मा ने कहते हैं जी आपका नाभि पद्म से ही मेरा जन्म हुआ है, ताले इसलिए आप मेरा पिता माता हो और मैं आपका संतान हूं। ये जो श्लोक जो ब्रह्मा ने श्रीमद भागवत का जी अभी जी दूसरा नंबर श्लोक श्लोक का इसका ऐसा लिंक है जी, जगत त्रयंतो दधि संप्लबोधि नारायणस्तो दर नाभिलानात् विनिर्गतो जस्तिति वाङ्न वैमिषा किन्तु सरोतन्न विनिर्गतोऽस्मि। जे 13 नंबर श्लोक भागवत का दशम स्कंध 14 अध्याय 13 नंबर श्लोक का साथ लिंग इस श्लोक में ये बताते ब्रह्मा जे बताते जे आपका नाभि पद्म से ही मेरा जन्म हुआ है और इसका कारण आप मेरा पिता माता हो और मैं आपका संतान हूं। बहुपाद इसका तात्पर्य बताते हैं श्लोक का जे अल्टीमेटली भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा का माता भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा तो कोई माता का गर्भ से नहीं आए हैं, जो भगवान का नाभि पद्म से जो कमल निकला है उससे पकड़ रहा है, इसलिए ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि कोई माता का गर्भ से आए नहीं है। अल्टीमेटली भगवान का ब्रह्मा का पिता एवं माता दोनों ही भगवान है और इसलिए ब्रह्मा उसका पुत्र हुआ है, इस प्रकार भगवान को संतुष्ट करने स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा ने माने बताते हैं जे पिता माता बालक रो नालय अपराध अपराध खम मोरे करह प्रसाद। बोलते जे पिता माता होता है अपना संतान का अपराध कभी नहीं लेते हैं, संतान तो अज्ञ होता है अवोध होता है, वो तरह तरह का अपराध करते ही रहते हैं। पिता माता का सामर्थ्य रहते हैं जे अपना पुत्र को माने सजा देने के शास्ति देने का, लेकिन स्नेहवश या प्रेमवश या करुणावश उसको शास्ति नहीं देते, उसको अपराध क्षमा कर देते हैं। जैसे बचपन में जे माँ का गर्भ में जब छोटा बच्चा रहते हैं कितना लात मारते हैं, पेट में कितना कुछ करते हैं, तो माँ का बहुत कष्ट होता है, लेकिन माँ इसमें दुखी नहीं होते और संतुष्ट होता है। क्यों ना माँ का पता चलता है जे ना मेरा पिता मेरा लड़का जिंदा है, मेरा लड़का अच्छे हिष्ट पुष्ट हो रहा है, प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता है। बहुत माँ का दर्द होता है पेट में जब लड़का इधर उधर से जाते हैं वा अंदर कुछ कार्य करते हैं, बहुत दर्द होता है। वहां जब छोटा बच्चा जब बचपन में कुछ तोड़ देता है बाप पिता उन्हें कभी कभी भगवता बस चप्पड़ मारते है तो पिता उन्हें बहुत लागते है, लेकिन उसको कुछ उसको भी पलटा थप्पड़ नहीं मारते है और पिता माता संतुष्ट है। कैसे ना पिता माता समझते हैं जे मैं जे आज जे हॉर्लिक्स खिलाया था इसका काम दिया, उसका ताकत बहुत हुआ, क्योंकि जब बच्चा जब मारते हैं जब बच्चा का ताकत नहीं होता है खुद माने रोने लगते हैं, और जब बच्चा पिता माता को मारने के बाद जब कुछ नहीं करते तो पिता माता क्या समझते है ना मेरा बच्चा का ताकत बहुत हुआ है। जैसे कृष्णा देखते है जब कृष्ण बचपन में था जब एक बार दोधी भांड तोड़ दिया था तो यशोदा माँ गुस्सा नहीं हुआ और हंस लगा संतुष्ट हुआ, क्यों ना मेरा छोटा लड़का कितना ताकत हो गया है, जे लोहे का जे छोटा सा जे लाठी जैसे वो उठा के मारा माने ताकत तो है ना, तब तो लोहे का दंड को उठा पाया, इसलिए प्रसन्न हो गया है। इसलिए बच्चों का जे नटखट बा बच्चों का जे अपराध पिता माता नहीं लेते हैं। इसमें अगर ब्रह्मा ने कहा था मैं तो आपका संतान अज्ञ हूं मैं तो अबोध बालक का तरह हूँ आपको, मैं अनजान में से गलती कर दिए है, इसलिए आपको चाहिए कि मेरे को क्षमा करने का, मेरा अपराध क्षमा करने का। बम्बा का बोलने का मतलब है जैसे छोटा बच्चा कुछ भी करे पिता माता से अपराध नहीं लेते हैं, अज्ञ समझ, जैसे मैं भी तो अज्ञ हूँ, मैं तो आपका ही संतान, आप भी मेरे जन्म हुआ है, मैं तो अज्ञ ही हूँ, आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरा गलती हो गया, क्या करे, मेरा अज्ञता वश मेरा गलती हो गया है, आपको प्रसन्न होना चाहिए जे मैं कितना दिमाग लगा के कार्य किया है, आपको माने मेरा अपराध नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार ब्रह्मा ने बोलते हैं। तो कृष्ण मानो कहते हैं, कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, आमी गोप तुमी के कोई छे आमारो नंदन। माने इस जो श्लोक है, ये श्लोक भागवत में ऐसे ही कोई उल्लेख नहीं आते है, जे बीज में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते बीज में कृष्ण ने कुछ कहा है, लेकिन ये ब्रह्मा ने सोचा, मानो कृष्ण ये कह सकते हैं, मैं जब बोला हूँ मैं आपका पिता, आप मेरे पिता माता हो, मैं आपका संतान हूँ, तब कृष्ण कह सकते हैं, संभावित उक्ति कृष्ण करके से कृष्ण कह इसी मान करके ये श्लोक आया है, जे कृष्ण कहे न ब्रह्मा, मैंने कृष्ण कहते हे ब्रह्मा, जे तुम्हारे पिता तो नारायण है, ये तो सब लोग जानते हैं, जे नारायण का नाही पद्म से आपका जन्म हुआ है, और मैं तो एक गोप बालक ग्वाला हूँ, ग्वाल मात्र हूँ, देखो मैं भी गाय चला रहा हूँ, सबका साथ खेल रहा हूँ, और चले किस प्रकार आप मेरा पुत्र हो गए हो, मैं तो नंदमा का पुत्र हूँ ना, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाल बाल हूँ, मैं गोप साथ खेल रहा हूँ, गाय चला रहा हूँ, देखिए आप, चले मैं आपको मैंने कैसे पिता हुआ हूँ, आपके पिता तो नारायण है, सब लोग जानते हैं, जगत में विख्यात है। तो ब्रह्मा ने कहते हैं जे मैं बताता हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ जे आप किस प्रकार मेरा पिता हो और मैं आपका संतान हूँ, आप बोल रहे जे आप गो माने ग्वाल वाले, आप मेरे पिता नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार, आप सुनिए। तब बोल रहे ब्रह्मा बोले न तुमी किना हो नारायण, तुमी नारायण सुनो ताहार कारण। ब्रह्मा कहे तुम नारायण नहीं हो, तुम ऐसे बोल रहे हो, तो सुनो मैं बोलता हूँ कैसे तुम नारायण हो। तब आज का श्लोक आते है जे किस प्रकार जे भगवान नारायण है, वो आज का श्लोक आता है, जे के बोलते हैं प्राकृत 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 सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुमी मूल स्वरूप। बोले प्राकृत 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 सृष्टि माने प्राकृत सृष्टि में और अप्राकृत सृष्टि में, माने प्राकृत जगत में और अप्राकृत भगवत धाम में। यहाँ पे अप्राकृत भगवत धाम ये अप्राकृत सृष्टि माने बता रहे, यहाँ पे बोलने का आशय है अप्रकृत जगत का जो प्रकाश को कहते हैं, क्योंकि अप्रकृत जगत नित्य है, वहां पे तो कोई सृष्टि व लय तो नहीं होता है, ये जगत का तो जो बार बार ध्वंस हुआ सृष्टि नहीं है, इसका बोलने का मतलब यहाँ पे जो अप्रकृत जगत का जो प्रकाश को कहते हैं, वहां पे सब कुछ नित्य होता है, कोई बार बार माने ध्वंस नहीं होता है व उसको उत्पत्ति होता ऐसे नहीं है। प्राकृत अप्रकृत सृष्टि जत जीव रूप, जितना जीव मूर्ति व जीव रूप है, जीव दो प्रकार के होते हैं, कि नित्य नित्य मुक्त और नित्य बद्ध नित्य संसारी जीव। जो नित्य मुक्त जीव है वो भगवत पार्षद का गणना में आते हैं। तो कृष्ण कृष्ण बताते हैं जे सही विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण योन्मुख, कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। बताते हैं जे जीव जे विभिन्न जीव है, ये जीव दो प्रकार का होता है, एक क्या है ना नित्य मुक्त, एक नित्य मुक्त जीव है और ये नित्य बद्ध नित्य संसार नित्य बद्ध जीव है। जो नित्य मुक्त जीव है वो हमेशा कृष्ण चरण में कृष्ण प्रयाण होता है, कृष्ण चरण उन्मुख होता है, और वो कृष्ण के भगवान के पार्षद नाम से परिगणित तो होता है, और वो क्या करते है ये भगवान का सेवा में सेवा करके हमेशा आनंद लेते हैं, वो लोग भगवान का प्रसन्नता के लिए हमेशा लगा रहते हैं। जी इस श्लोक में जो पहले ना जीव दू इसके अंदर, और यहाँ पे और एक बात है, जो इस संसार में जो सब जीव कोई भगवत कृपा से या भक्त का कृपा से गुरु का कृपा से जब भगवत उन्मुख हो जाते हैं, होके जब भगवान का भजन करके सिद्ध होके जब आध्यात्मिक जगत पार्षद लाभ करते हैं, ताले उसका क्या होगा, वो तो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध का अंदर नहीं आया, वो तो सिद्धि प्राप्त करके पार्षद प्राप्त किया है, उसका भी लिया गया है। जो तो जीव जितना जीव बता दिया ना, इसलिए नित्य मुक्त नित्य बद्ध और जो लोग आध्यात्मिक जगत में इस जगत से गए हैं उनका भी लिया गया है। इसमें जो जीव जितना जीव है यहाँ पे ऐसे बताते हैं, इसका अर्थ ये है जितना जीव है माने आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार जीव है, नित्य मुक्त जीव है और जे सिद्धि प्राप्त करके तो प्रसाद तो प्राप्त किया है, दोनों प्रकार जीव होते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो सारी जीव है। ताहार जी आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप, ताहार माने जितना जीव है उसका आत्मा, आत्मा मतलब क्या है सर्वव्यापक वस्तु आत्मा, आत्मा शब्द कहे कृष्ण बृहत्त स्वरूप सर्वव्यापक सर्व साक्षी परम स्वरूप। आत्मा का अर्थ बताते हैं कृष्ण गोस्वामी जे आत्मा का अर्थ है मूल है, कृष्ण का सूचक है और ये क्या है ना सर्वव्यापक सबका साक्षी है और परम स्वरूप है। सिद्धार्थ स्वामी इसको बताते हैं आत्म तत्वात प्रमात्वात आत्मा ही परम हरि, जे ये सर्वव्यापक होने का कारण आत्मा हरि ही है। और इसको श्रुति में भी कहते हैं जच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। बोला ये जगत में जो कुछ दिखाई देते हैं बा जो कुछ हम लोग सुनते हैं जगत में जो वस्तु है और अंदर बाहर जो कुछ है सब में भगवान माने व्याप्त होकर स्थित रहते हैं समस्त वस्तु में। इसलिए इसका अर्थ क्या है ना सारी जीव सभी जीवों का जो आत्मा है वो आत्मा कहते ना समस्त जीव में व्याप्त रहते हैं, यानी जो आत्मा या भगवान होता कहते ना आश्रय और जीव होता है आश्रित। इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण गीता बताते यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वानी भूतानी मत्स्थानी तु पधारयो। जब कोई प्रश्न किस प्रकार समस्त जीव में व्याप्त है, जिस प्रकार वायु हम लोग सर्वत्र फैला हुआ है लेकिन वो आकाश का अंदर सीमित है, आकाश का बाहर नहीं है, उसी प्रकार समस्त जीव कितना जीव है 84 लाख जीव जनी है ये जगत में कितना जीव है लेकिन समस्त जीव भगवान का अंदर ही है। और इसका प्रमाण इसका बात को अच्छे से बताएंगे इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि इसका बाद में अच्छे से इसको व्याख्या किया जाएगा। तुम्ही मूल स्वरूप, इसका बस मैंने अर्थ है तुम्ही मूल स्वरूप, मूल से माने मूल उपादान। जीव स्वरूप तो श्री कृष्ण का अनु अंश है, जीव श्री कृष्ण का अनु अंश है, इसलिए जीव हे मूल उपादान है, इसलिए जीव को मूल प्राण कहा था। इसका अर्थ है ये श्लोक का मेन अर्थ है इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में जितना जीव है नित्यबद्ध नित्य मुक्त और सिद्धि प्राप्त जितना जीव है समस्त जीव का परमात्मा एवं मूल स्रोत आप ही है। इसका बोलने का मतलब है यार कि ये सबका मूल स्रोत एवं परमात्मा भगवान ही है। तात्पर्य श्लोक बताते है यह विश्व का प्राकट्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। ये जो भौतिक जगत का जो प्रकट होता है ये तीन भगवान ये तीनों गुण है सत्य रज तम, ये तीनों गुणों का पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में इस प्रकार जो भौतिक तीन गुण सत्य रज तम ये तीन गुण उसका नहीं पाया जाता नहीं होता है, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधता से परिपूर्ण है। कोई बोल सकते यहाँ पे तो प्रकृति का तीनों गुण सत्रतम तीनों गुणों का क्रिया प्रतिक्रिया से विभिन्न विविधता हुआ है तो आध्यात्मिक जगत जब ये तीनों गुण नहीं है तब वह कोई विविधता नहीं होगा ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। तो नहीं वहां पे बहुत विविधता है, वहां पे अलग अलग तरह जीव भी रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी है, वहां पे विभिन्न जीव भी है, शुद्ध विविधता ऐसे ही नहीं है। और वो सब जीव क्या बोलते नित्य मुक्त है सब, और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेमामयी सेवा में लगे रहते हैं। वो नित्य मुक्त जीव क्या करते हैं ना वहां पे भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, वो लोग का काम है भगवान का सेवा करना, और क्या बोलते हैं कृष्ण के सेवा करने के वो लोग का उद्देश्य, वो लोग का अपना का कोई ख्याल नहीं है, भगवान का प्रसन्नता करने के लिए वो लोग लगे रहते हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के तीनों ताप एवं कष्टों से पीड़ित होता है। ये भौतिक जगत में आत्मिक जगत जीव क्या करते हैं ना भगवान का सेवा करके भगवान का सेवा सुख में मस्त रहते हैं, अबे हमेशा सुखी रहते हैं, अबे कोई दुख नहीं, वही कुंठा कुंठा रहित, अबे कोई दुख नहीं है कि भगवान का हमेशा दर्शन करे, भगवान का सेवा करे, सेवा सुख में हमेशा मत है, खुश है। लेकिन भौतिक जगत में समस्त जीव चित्रिताप क्लेश में क्लिष्ट है, दुखी है। जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीन प्रकार जो क्लेश है, जे विभिन्न अन्य अन्य जीवों के द्वारा जो दुख मिलते हैं, वा विभिन्न देवता के द्वारा जो झंझा बृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि विभिन्न रकम रोग व्याधि वा खुद से जो अपना मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट, जो तीन प्रकार जो दुख है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार कष्ट से जीव हमेशा पीड़ित रहते हैं और ये नाना जोनियों में घूमते रहते हैं। जे ये जीव होता है जब नित्य बद्ध होने के कारण वो 84 लाख जीव जोनि में घूमते रहते हैं। नवलक्षणानि जलजा स्थावरा लक्ष विंशति क्रिमयो रुद्र शंख कहा पक्षिनाम दश लक्षणम त्रिंश लक्षानी पासव पसव चतुर्लक्षानी मानव। जे पद प्रमे कहते हैं ये 84 लाख जीव जोनि होता है, ये उसका अंदर 9 लाख जलचर होता है और 20 लाख उद्भिद मैंने स्थावर उद्भिद ऐसे लता गुल्म स्थावर होता है और जो कृमि कीट रुद्र शंख मैंने 11 लाख कृमि कीट होते कीड़े मकोड़े ये सब 11 लाख होता है और 10 लक्षानी पशव जो पशु पक्षी ये 10 लक्षानी पक्षानी जे पक्षी पशु पक्षी 10 लाख होता है और पशु होता है 30 लाख और 4 लाख मनुष्य। जे बौद्ध जीव ये 84 लाख जीव जन्मी हमेशा घूमते रहते हैं आज ये तीन प्रकार क्लेश से हमेशा क्लिष्ट रहते दुखी रहते हैं क्योंकि वो भगवान से बद्ध जीव का साधारण टेंडेंसी होता है भगवान से विमुख रहना भगवान का सेवा नहीं करना इसलिए दुखी रहते हैं। जब भगवान का सेवा करेगा तब तो उन्मुख होकर सिद्धि प्राप्त करके भगवद्धम जाके पार्षद लाभ करेगा भगवान का सेवा सुख में मस्त रहेगा। वो आगे कहते हैं संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है। जो संकर्षण से ही समस्त आया है कैसे जब भगवान का दक्षिण दाहिने भाग से बलराम का प्रकट होता है और बलराम से ही जो पहले चतुर्विह संकर्षण पद्मग्न अनिरुद्ध वासुदेव फिर संकर्षण से द्वितीय चतुर्विह होता है संकर्षण पद्मग्न अनिरुद्ध वासुदेव ये द्वितीय संकर्षण से ही तीन पुरुष अवतार एवं समस्त जीव का प्रकट होता है इसलिए कहते हैं यहाँ पे संकर्षण समस्त जीवों का मूल उद्गम है और जो संकर्ष से आते हैं क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति का विस्तार है क्योंकि सारे जीव भगवान जी तटस्थ शक्ति है उसका ही विस्तार है समस्त जीव। उनमें से कुछ प्रकृति के बद्ध है जो जितना जीव है तटस्थ माने जो नित्य मुक्त नित्य बद्ध समस्त जीव उससे आते हैं उनमें से कुछ संसार में बद्ध रहते हैं और अन्य सब आध्यात्मिक जगत में संरक्षित रहते हैं। ये जगत में जितना बद्ध जीव है जो भगवान का जी महामाया शक्ति के अंदर में वो लोग का संक्ष में रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में जितना जीव है भगवान का जो आध्यात्मिक शक्ति जी जोगमाया जोगमाया का संरक्षण में रहते हैं। जो सब जी जोगमाया का संक्ष में रहते हैं वो लोग स्वाभाविक रूप से भगवान से उन्मुख हो जाते हैं। इसलिए बोलता है जिसमें महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित जो महात्मा होता हो गया ना दैवी प्रकृति का भगवान का जो आध्यात्मिक प्रकृति बा जोगो माया इसका संक्ष में रहते हैं। यह भी आचार्य लोग बताते हैं विशेष करके ये पे दैवी प्रकृति माने राधानी को लिए राधानी का संक्ष में रहते हैं माने डायरेक्ट जो राधानी का पास जाएगा तब तो डायरेक्ट कृष्ण के पास आसानी से आ जाएगा इसलिए राधानी का लिए है यार की। इसका उदाहरण देते हैं किस प्रकार जीव बद्ध रहते हैं बोलते भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप है। ये जो भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का बद्ध रूप बद्ध दशा है। जे गीता में बताया ना ऊर्ध्व मूल मधु शाखाम असत्यम प्रहुर अव्ययम छंदांश जस परनानी जस्तम वेदस वेदीवित। ये जो जगत है आध्यात्मिक जगत का ही एक उल्टा रूप है उल्टा प्रतिबिंब है। यह पता जो बद्ध रूप है किस प्रकार बद्ध है इसके उदाहरण का समझाते बहुपा जिस प्रकार धुआं धुआं अग्नि का बद्ध दशा होता है जब लेकिन धुआं अग्नि का ऊपर निर्भर है अग्नि नहीं रहेगा तो धुआं हो नहीं सकते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत नहीं होगा तो भौतिक जगत नहीं हो सकते बोलने का मतलब है यार ये जैसे धुआं का बद्ध अवस्था अग्नि का बद्ध अवस्था धुआं है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत का मानी विकृत रूप या बद्ध अवस्था ये भौतिक जगत है। जिस प्रकार धधकती हुई धुआं में अग्नि में धुआं का कोई स्थान नहीं होता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में यही बद्ध अवस्था कोई स्थान नहीं होता है। कि भोजे तो पद पद कोई स्थान नहीं होता है कि वहां पे सब चीज तो स्वाभाविक रूप से उन्मुख है, भगवत परायण है, भगवत का सेवा सुख में मग्न है, वहां पे कोई बौद्ध का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए पुवल आश्चर्य समझाते हैं और अग्नि से ही समस्त कार्य हो रहे, धुआं से कोई कार्य नहीं होता है। अग्नि से आपको कुकिंग होता है, सब कुछ अग्नि से ही चलते हैं, लेकिन धुआं से कुछ नहीं होता, धुआं बाधा हो जाते हैं। जब धुआं होता है, जब धुआं हट जाएगा, जब अग्नि आएगा तब कार्य सिद्ध होगा। उसी प्रकार जब तक जीव बद्ध रहेगा तब उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। जब वो जो बद्ध सा हट जाएगा, जब कृष्ण उन्मुख हो जाएगा, जब तब वो भगवत परायण होकर भगवत का सेवा कर आत्म जा सकते, जा नहीं सकते। जब तक ये जीव का बद्ध अवस्था नहीं हटेगा तब तक आत्म जगत में जा ही नहीं सकते, कोई सवाल नहीं है, यही इसको रहना पड़ेगा। आत्म जगत में जीव किस प्रकार सेवा करते हैं बताते हैं। जब मुख्यतः पांच रस में आत्म जगत में जीव लोग सेवा करते हैं, जो शांत, दस, दास, साक्ष, वात्सल्य, माधुर्य, ये पांच प्रकार भाव में विशेष रूप में आध्यात्मिक जगत में जो जीव है, मुक्त जीव है, सेवा करते हैं। कोई शांत रस में, कोई पशु पक्षी पेड़ लता आदि रूप में शांत भगवान का सेवा में सहायता करते हैं एवं अपना सुख लेते हैं। दास रस में भगवान का प्रभु मान के भगवान का सेवा करते रहते हैं। सख भाव में भगवान का सखा मित्र समझ के भगवान का साथ सेवा करते हैं। एवं वात्सल्य भाव में जो भगवान को पिता माता समझ के भगवान को पिता माता समझ के या खुद भगवान का संतान समझ के मैं इसको सेवा करते, दो तरीका है। जो पिता भगवान कोई जीव को पिता संतान समझे या जीव भगवान का संतान समझे, दोनों ही वात्सल्य रस में आते हैं। और माधुर्य रस में जो कांता भाव में पांच प्रकार भाव में सेवा होता है। किंतु बोल रहे हैं भौतिक जगत में हर व्यक्ति सांसारिक सुख एवं दुख का आत्मकेंद्रित भोक्ता होता है, लेकिन भौतिक जगत पूरा उल्टा है। जैसे आध्यात्मिक जगत में क्या होते हैं, जीव पांच रस में भगवान का हमेशा सेवा करता है। भगवान का प्रसन्नता करने के लिए लोगों का काम है, भगवान कैसे प्रसन्न होगा, भगवान कैसे खुश होगा, उसी के लिए हमसे व्यस्त रहते हैं। लेकिन आत्मा पूरा उल्टा है, आध्यात्मिक जगत में जीव जो कुछ करे, कार्य करे, सुख हो, दुख हो, सब खुद ही उसको भोगना, भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना। प्रकृति ही क्रिय मानी गुण ही कर्मानी सर्वसह अहंकार विमुरात्मा कर्तरमित मन्नते। जो बद्ध जीव होते हैं, मूढ़ जीव क्या होते हैं, सारी कार्य प्रकृति का तीन गुण से संपन्न होता है, लेकिन खुद को कर्ता मान बैठते हैं, खुद को बोलता मैं ही करता हूँ, अहम भोगी मैं ही खुद हूँ, इसलिए तो बात जाते कर्म फल में। जब समझ जाएगा जो होता है भगवान का कृपा से होता है तब कोई समस्या नहीं। जब भगवान का अपना कार्य जब भगवान को समर्पण कर देगा बा भगवान का उद्देश्य समझ पड़ेगा तब कोई उसका बद्धता नहीं आएगा, तब तो अकाम हो जाएगा ना, कृष्ण केंद्रीय काम हो जाएगा, तब नहीं होगा। जैसे भक्तों लोग बा भगवान का सेवक लोग वही सेम कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग क्या भगवत के उद्देश्य के लिए करते, भगवान के लिए करते, इसलिए तो कोई बद्धता नहीं आते है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो अपने खुद के लिए करते हैं, अपना फल भोगने के लिए करते, इसलिए उसका क्या ना बद्ध अवस्था आ जाते हैं। लेकिन वो अपने कर्ता मान बैठते है, लेकिन वो विफल होता है, क्योंकि वो सफल नहीं है। वो तो मान बैठे क्या हुआ, तो कोई बोलता है मैं अभी राजा हूं, बोले थोड़ी चलेगा, लेकिन उनका वो शक्ति नहीं है। इसलिए बद्ध जीव वो कोई स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान का नियंत्रण में है, माया का शक्ति का नियंत्रण में है, इसलिए वो कोई स्वतंत्र नहीं है। भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयोर्जुन तिष्ठति भ्रामयम सर्वभूतानि जंतर्जुनानि मायोया। जे भगवान ही समस्त जीव का हृदय में आसीन होकर बैठ करके जे जंतु के द्वारा सब जीव को घुमा रहे, कोई जीव का स्वतंत्र नहीं है जो खुद कुछ कर सके, भगवान का निर्देश में सब कुछ हो रहा है, तब उनको स्वतंत्र नहीं हो कैसे करेगा, वो कोई स्वतंत्र रूप में कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए तो उनको कोई माने सफल नहीं हो पाते हैं। और सारी जीव भगवान का वश में है, इसलिए ये नारायण कहलाते हैं। स्वभावतः ये जगत में ये जीव होता है, ये जीव हमेशा तीन विषय का प्रति हमेशा आसक्त होता है, वा वो तीन विषय वस्तु को लेके ही रात दिन चर्चा करते हैं। तीन विषय क्या है, एक है रोमांस माने कि प्रेम भालोबासा, इसी में लेके ही सब चीज मस्त रहते हैं। और एक क्या है, पॉलिटिक्स राजनीति, सब समय राजनीति का बात, ये क्या हो, वो क्या हो रहे, बौद्ध जीव का ही लक्षण है। और एक क्या है, खेला माने खेल, कैसे खेल हो रहा है, जी है ना, आखबार में लास्ट पेज में खेल रहते हैं। ये तीन चीज को माने विषय वस्तु आलोचना करके बौद्ध जी हमेशा जीवन बिताते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक, इतना आकर्षक है, ये भगवान श्री कृष्ण भी ये समस्त बद्ध जीव को आकृष्ट करते हैं। तो रोमांस मैंने क्या प्रेम भलोबासा, जो वृंदावन लीला भगवान का गोपियों का साथ जो कृष्ण का जो प्रेम भलोबासा, ये लीला कौन नहीं आकृष्ट होता है? जब कोई सुनते हैं सब आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए भगवान सब से जीव को आकृष्ट कर पाते हैं। इसका बात क्या होता है, प्रेम भरोसा बात ना गृहस्थ जीवन, जे द्वारका लीला जे सो किस प्रकार सब सुनते, किस प्रकार कृष्ण 16108 महिषी के साथ रहा है, क्या किया है, सब सुनना चाहते, आकृष्ट होता है, इसलिए उसे कहते हैं। और दूसरा क्या पॉलिटिक्स, जे सब लोग राजनीति को लेके हमेशा चर्चा करना भलप माने अच्छा लगते हैं, लेकिन सबसे पॉलिटिक्स राजनीति किस में है, महाभारत ईश्वर की पॉलिटिक्स दुनिया में है। जब महाभारत जब पहले शुरू हुआ था उस समय जिस समय महाभारत सीरियल चलता था माने एक साल में सारा विश्व शांत हो जाता था, सब लोग सुनते थे। कहा जाता है चोर चोर भी चोरी करना छोड़ देते थे, अरे कोई घर में चोरी करने के लिए गए देख रहे महाभारत हो रहा है, वो भी वहां बैठ जाते थे महाभारत सुनने के लिए। इतना आकर्षक, इतना पॉलिटिक्स, इतना रोमांटिक चीज है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका केंद्र बुद्ध कौन है, श्री कृष्ण है, तो कौन नहीं आकृष्ट होगा, मैंने बौद्ध जीव भी आकृष्ट होते हैं। इसका केंद्र मूल मूल में कौन है, कृष्ण ही है, सब कुछ करा रहे हैं। और क्या ना खेल, ये सब लोग सुन रहे आज क्या खेल हो रहा है, काल क्या खेला हो रहे हैं, हमेशा उसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन कृष्ण का वृंदावन लीला क्या है, जो गोस्वामी लीला एक खेल ही खेल है। अभी जो हमने देखा है जे ब्रह्मा का क्यों दिमाग चकरा गया, जे कृष्ण खेल रहा है, ये खेल रहे, यहाँ खेल रहे, वहाँ खेल रहे, कूद रहे, सोखा का मुख से खाना खा रहे, जैसे साधारण बच्चे का तरह। मैं वृंदावन लीला का कृष्ण क्या खेल ही खेल, और कुछ नहीं है, यहाँ खेल रहे, वहाँ खेल रहे, इसका घर में मटकी फोड़ रहे, यहाँ कूद रहे, ये पेड़ से जो मुना में कूद रहे, वो पेड़ से कूद रहे, हमने खेल ही खेल है। कौन वृंदावन लीला कौन नहीं पसंद करते हैं, कृष्ण का लीला सब लोग आकृष्ट होते हैं। ऐसे भी कोई नहीं है कृष्ण का लीला सुनकर संतुष्ट नहीं होगा। अभी अभी कृष्ण का लीला चालू हो जाए लोग खाना पीना छोड़ के सुनते रहेगा, से कुछ भी लीला हो, गोपियों का साथ प्रेम लीला हो, बा गोपियों का साथ खेल लीला हो, बा महाभारत का पॉलिटिक्स लीला हो, सब लीला में आकृष्ट होता है। ये बोलते कृष्ण का सर्वाकर्षक, समस्त जीव को कृष्ण आकृष्ट कर लेता है, से रोमांस हो, पॉलिटिक्स हो या खेल हो, तीनों में आकृष्ट कर देते हैं, इतना भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट होता है। ये जगदानंद पंडित कहते हैं प्रेम विभूति में जे हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कृष्ण का है या राधा रानी का है या गौरांगों का है, लेकिन बोलते ऐसे कहने से नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है बा जिस प्रकार आचरण करने के लिए कहा है, हम लोग उस प्रकार जब तक आचरण नहीं करेंगे, बा आप लोग जो आचार करके प्रचार नहीं करेंगे, तब हम लोग का कार्य सिद्ध नहीं होगा। महाप्रभु का उद्देश्य क्या, जे आप लोग पहले आचरण कीजिए करके प्रचार कीजिए। हम लोग भी जे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कृष्ण का भक्त है, राधानी का भक्त है, महाप्रभु का भक्त है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, जे भगवान जो उपदेश दिया है उसका माध्यम से जीवन में खुद को पहले अपनाना पड़ेगा, करके फिर दूसरों को सिखाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। बहुपत क्या कहते हैं, जे आप लोग सब प्रचार कीजिए, प्रचार ही मेन है, प्रचार का माध्यम से ही हम लोग का सोसाइटी खड़ा किया है, एवं हम लोग प्रचार का माध्यम से सारा विश्व देखिए कितना लोग अभी भक्त बने हैं। बहुपत का आने का पहले भी प्रचार होता था, लेकिन उतना नहीं है, ग्रंथ का माध्यम से रहता था, जो लोग विद्वान था, पंडित था, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के भक्त होते थे। लेकिन जब प्रचार होना शुरू हुआ तब क्या हुआ, सारा विश्व का लोग जे भगवान श्री कृष्ण कौन है जान पाया। ये बहुपात ना हो तो तब की होती, बहुपात ना होता तले कोई समझ पाते कृष्ण कौन है, हम लोग क्या समझते थे नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है वा कुछ कोई शिव, देखिए कृष्ण जो सर्वस्व भगवान है, कृष्ण जो मूल है, जो बहुपात नहीं होता शायद विश्व में सब लोग नहीं जान पाते, मैं इतना आसानी से एक कृष्ण भक्ति कर नहीं पाते। कुछ कोटिपय करते जो लोग माने सुकृतिवान वा विद्वान वा पहले जीवन में भक्ति किया है अलग बात है, लेकिन सबका बस का नहीं था, इसलिए बहुपात का माध्यम से हुआ। इसलिए हम लोग का सबको चाहिए क्या, ये भगवत वाणी एवं बहुपात संतुष्ट करने के लिए ये शास्त्र को सब जीवन में अपनाना पड़ेगा, एवं अपना के समस्त जीव को माने जीव को कल्याण के लिए प्रचार करना पड़ेगा, तब बहुपात भी संतुष्ट होगा एवं अपना जीवन भी सफल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री प्रभुपाद की, चैतन्य चैतन्य मित्र की, निताई गौर नाथ परमानंदे हरि हरि बोल।